नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी पर दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, पदार्थ यानी मैटर।
हाँ, मैटर
हमारे चारों तरफ, मतलब आप देखें तो पेन, पानी, यहाँ तक कि हवा, सब कुछ पदार्थ ही तो है।
बिल्कुल।
हमारे पास इस विषय पर एक अध्याय है और आज हम उसी के जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा इरादा यह है कि पदार्थ के जो तीन मुख्य रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनको ठीक से समझें।
हाँ।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ अपनी शक्ल बनाए रखती है, कोई चीज़ बह जाती है और कोई फैलकर जैसे गायबी हो जाती है।
बिल्कुल सही कहा। और ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में इनका बहुत महत्व है।
हाँ, वो तो है।
जैसे हम चीजों का सही इस्तेमाल कैसे करें, या जब मौसम बदलता है तो पानी बर्फ या भाप क्यों बन जाता है, ये सब इसी समझ से जुड़ा है। हम तो अपने आसपास लगातार देखते हैं पदार्थ को रूप बदलते हुए।
तो फिर शुरू करते हैं। पदार्थ है क्या असल में? सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, मतलब जगह लेती है, और जिसमें वजन होता है।
हाँ,
और इसके तीन जाने पहचाने रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले बात करते हैं ठोस चीजों की, सॉलिड्स।
ठीक है।
इनकी एक तय बनावट और आकार होता है,
हाँ।
और इनका आयतन, मतलब ये कितनी जगह घेरेंगी, वो भी निश्चित होता है। इन्हें दबाना, कंप्रेस करना मुश्किल होता है,
हाँ।
और ये आमतौर पर सख्त होती हैं, मतलब आसानी से अपना रूप नहीं बदलती, जैसे कोई पत्थर हो गया या किताब।
हाँ, और ऐसा पता है क्यों होता है? इनके अंदर के कणों की वजह से।
अच्छा, कैसे?
ठोस चीजों में ये कण एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, एक मजबूत बंधन में बंधे हुए।
अच्छा,
वो अपनी जगह पर हल्के हल्के कांपते तो रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पर कहीं घूम फिर नहीं सकते। इसी वजह से उनका आकार और आयतन बिल्कुल पक्का रहता है।
अच्छा, तो ये हुई ठोस की बात। अब आते हैं लिक्विड्स पर, मतलब द्रव, जो चीजें बह सकती हैं।
हाँ, तरल पदार्थ।
इनका अपना कोई तय आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालो उसी का रूप ले लेते हैं।
सही।
लेकिन हाँ, एक बात है, इनका आयतन निश्चित रहता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है।
बिल्कुल।
इन्हें ठोस के मुकाबले थोड़ा दबाया जा सकता है, और ये बहते हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड भी कहते हैं। पानी, तेल, जूस, ये सब उदाहरण हैं।
हाँ, और द्रवों के कण जो हैं वो ठोस के कणों जितने पास पास नहीं होते, उनके बीच थोड़ी दूरी होती है,
अच्छा,
और बंधन भी उतना मजबूत नहीं होता। इसी वजह से वो एक दूसरे पर फिसल पाते हैं और बहने लगते हैं। बर्तन का आकार तो ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि फैलकर कहीं भी चले जाएं, उनका कुल आयतन उतना ही रहता है।
और आखिर में है गैसें।
गैसें, हाँ
इनका तो ना कोई निश्चित आकार, ना ही निश्चित आयतन, कुछ भी तय नहीं।
सही कहा। इन्हें आसानी से दबाकर कम जगह में भरा जा सकता है।
कंप्रेशन आसान है,
हाँ,
ये भी बह सकती हैं, और जिस भी बर्तन में इन्हें रखा जाए, ये उसकी पूरी जगह में फैल जाती हैं।
पूरी जगह घेर लेती हैं,
और बर्तन खुला हो तो?
बाहर निकल जाती हैं। हवा, ऑक्सीजन, रसोई गैस, भाप, ये सब गैसें ही तो हैं।
बिल्कुल, गैसों के कण तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और बड़ी तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं।
अच्छा,
उनके बीच काफी खाली जगह होती है, यही कारण है कि वे आसानी से फैलती हैं और किसी भी खाली जगह को पूरी तरह भर देती हैं।
हाँ, जैसे वो इत्र वाली बात।
हाँ, कभी सोचा है कमरे के एक कोने में इत्र छिड़कने पर महक फौरन पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है? वो गैस के कणों की वजह से ही है, वो तेजी से फैलते हैं।
हाँ, ये तो दिलचस्प है।
अध्याय में एक खास बात पानी के बारे में बताई गई है,
हाँ, पानी।
कि ये एक ऐसा आम पदार्थ है जो हमें आसानी से तीनों रूपों में देखने को मिलता है, ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी भाप।
बिल्कुल, तीनों अवस्थाएं दिखती हैं।
और ये गलतफहमी भी दूर की गई है कि सिर्फ द्रव ही आकार बदलते हैं, गैसें भी तो आकार बदलती हैं।
हाँ, बल्कि वो तो पूरे बर्तन को ही भर देती है, उनका कोई अपना आकार है ही नहीं।
सही।
अब जरा इस पर बात करते हैं कि पदार्थ अपना रूप बदलता कैसे है, स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
इसमें तापमान, टेम्परेचर, उसकी भूमिका सबसे अहम है। तापमान कम या ज्यादा होने पर पदार्थ एक रूप से दूसरे में बदल सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये बदलाव अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उल्टाए जा सकते हैं, पदार्थ वापस अपने पुराने रूप में आ सकता है।
बिल्कुल, जैसे ठोस को गर्म करें तो वो पिघलकर द्रव बन जाता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना।
हाँ, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है।
फिर अगर द्रव को और गर्म करें तो वो उबलकर या वाष्प बनकर गैस में बदल जाता है।
बॉइलिंग या इवेपोरेशन,
हाँ, उबालना या वाष्पीकरण, जैसे पानी का भाप बनना।
और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब गैस ठंडी होती है तो वो वापस द्रव बन जाती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन।
संगनन, हाँ, जैसे भाप ठंडी होकर पानी की बूंदें बन जाती है, अक्सर ठंडे ग्लास के बाहर दिखता है।
बिल्कुल। और जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो वो जमकर ठोस बन जाता है। इसे कहते हैं फ्रीजिंग, जमना।
हाँ, पानी का जमकर बर्फ बनना।
हाँ, हमारे रोज के जीवन में तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। गरम तवे पे मक्खन का पिघलना, गीले कपड़ों का धूप में सूखना,
हाँ सही बात है।
ये सब पदार्थ के रूप बदलने के ही तो खेल हैं।
आखिर में इन अलग अलग रूपों के इस्तेमाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूजेस क्या हैं?
हाँ, ये भी जरूरी है।
ठोस चीजें जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, शीशा, इनसे घर, पुल, गाड़ियां, फर्नीचर, बर्तन, खिलौने, क्या कुछ नहीं बनता।
बहुत कुछ।
द्रव जैसे पानी हमारे पीने, नहाने, खाना पकाने के काम आता है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों को चलाते हैं।
बिल्कुल। और गैसें जैसे ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए कितनी जरूरी है।
हाँ, और एलपीजी गैस जिससे हम खाना पकाते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि पदार्थ हमारे चारों ओर हैं और इसके तीन मुख्य रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। हर रूप के अपने खास गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके कण कैसे व्यवस्थित हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं।
सही।
और तापमान में बदलाव करके हम इन रूपों को एक दूसरे में बदल सकते हैं, पिघलना, उबलना, संघनन और जमना जैसी प्रक्रियाओं के जरिए।
और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, एक सवाल।
हाँ, क्या?
अगर तापमान को बदलने वाली ये गर्मी या ठंडक ना हो तो क्या पदार्थ कभी अपना रूप बदल पाएगा?
अच्छा सवाल है।
क्या बर्फ कभी पानी बनेगी या पानी कभी भाप? जरा सोचिए, बिना तापमान के उतार चढ़ाव के हमारी दुनिया कैसी होती?
हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।